नवम परिच्छेद अथ उदेशकर्म प्राप्तम अलंकार निरूपणम बहुवक्तव्य तेना उलंघ्य रीतिम आह पद संघटना रीतिरंगस्था विशेषवत उपकर्त्री रसादिनाम रसादिनाम अर्थाक्ष शब्दार्थ शरीरस्य काव्यस्यात्म भूतानाम सा पुनः स्याच्चतुर्विधा वैदर्भी चा अथ गौंडी च पांचाली लटिका तथा सारीति तत्र माधुर्य व्यंजकैर वर्णरचना ललितात्मिका आवृतिर अल्प प्रवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति श्रीष्यति यथा अनंगमंगल भुवः इत्यादि रुद्रत्वाः असमस्तैक समस्तथा युक्ता दशवीर्गुणौश्च वैदर्भी वर्ग द्वितीय बहुला स्वअल्प प्राणाक्षराः च सुविधेया अत्र दशम गुणास्तन मुक्ताः श्लेषादयः ओजः प्रकाश कैवर्णैरवन्ध आडम्बरः पुनः समास बहुला गौणी यथा चञ्च अद्भुज इत्यादि पुरुषोत्तम आह बहुतर समास युक्ताः सुमः प्राणाक्षरा च गौणीय रीतिरनुप्रासं महिम परतन्त्रास्त्रोक्त वाक्या च वर्णैशेषैः पुनर्द्वयोः समस्त पञ्चशदौपदोः बन्धः पांचालिका मता द्वयोर्वेदर्भिगौण्यो यथा मधुरया मधुबोधितं माधवी मधुसमृद्धि समेधितया मधुकारंगनया मुहुर उन्मदध्वनिभृता निर्भृता चक्षरमुज्जरो भोजस्त्वाह समस्त पञ्चपदामोजः अतिकान्ति समन्विता मधुरां सुकुमारां च पांचाली कवयोः विदुः लाटी तु रीति वैदर्भिः पांचाल्यो अन्तरे स्थिता यथा अयम् उदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनी नाम युदयग्रे अनल बालमन्दार पुष्पम् विरह विधूर क्वद्वन्ध बन्धुभिरभिन्दन कुपित कपी कपोल क्रोड़ा ताम्रस्तमांसी कश्चिद्दाह मृदु पद समास सुभग्गाः युक्तैरवर्णन च अतिभूयिष्ठा उचित विशेषण पुरित वस्तुन्यासाः भवेल्लाठी अन्यताहु गौणी आडम्बरत्वास्यादै वैदर्भिः ललितक्रमा पांचाली मिश्रभावेन लाठिन मृदुः पदैः क्वचित् वक्त्राद्यौचित्यन्धरचनादयः वक्त्रादित् शब्दवाच्य प्रबन्धो रचनादित्यादिशब्दाद्वृतिवर्णौ तत्र वक्त्रौ चित्यदथ मन्यास्त्राणम् अलम्बप्लुत क्वचर अलन्मन्दरध्वानिद्धरः धीरः कोण आघेतुः कोणघातेषुः गर्जप्रलम्भद घटान्यो अन्य सदृषच्चण्डः कृष्णकोक्रोधाग्रदूतः कोलकोलनिधनो उत्पातनिर्धानत्वात् केन अस्मत्सिंहनाद प्रतीरस् इति सखोह दुन्दुभिस्तान्वितोऽयम् अत्र वाच्यस्य क्रोधव्यञ्जकत्वे अपि भीमसेन वक्तृत्वम् येनाद्भूताः रचनादयः वाच्योचित्यार्थद्य युद्याहृते मूर्धाद्यव्युद्योम्यमान इत्यादौ प्रबन्धौ उचित्यथ नाट्यकादयौ रौद्रे अप्यभिनयः प्रतिकूलत्वेन न दृघः समासादयः एवमाख्यामयिकाः शृङ्गारे अपि न मश्रीणवर्णादयः कथायाम् रौद्रे अपि नास्य नन्द मूर्धतः एवमन्यदपि गेयम् इति साहित्यदर्पणे रीति विवेचनो नाम नव परिच्छेदः हिन्दी कलिन्दनन्दी नुकुल फूलद्वा नलमिञ्च जूलतान्तरेषु लवङ्गवल्ली वलिताङ्गकान्ति सुमङ्गलसन पातु तरुष्टमालः अथ इति यद्यपि उत्कर्षहेतवस्ते स्युः गुणालंकार इतयः। इस उद्देश्य क्रम के अनुसार गुणों का निरूपण करने के अनंतर अलंकारों का निरूपण प्रसक्त है, परंतु अलंकारों से वक्तव्य बहुत है, अतः उसे छोड़कर सूची कटाह न्याय से पहले रीतियों का निरूपण करते हैं। पद संघटन इति, पदों के मेल या संगठन को रीति कहते हैं। वह अंग संस्थान की तरह मानी जाती है, जैसे पुरुषों के देह का संगठन होता है उसी प्रकार काव्यों के देह रूप शब्दों और अर्थों का भी संगठन होता है, इसी संगठन को रीति कहते हैं। यह काव्य के आत्मभूत रस भाव आदि की उपकारक होती है। जिस प्रकार पुरुष या स्त्री की शरीर रचना देखने से सुकुमारता, मधुरता अथवा क्रूरता, कठिनता आदि उसके गुणों का ज्ञान होता है और उससे उस देहधारी की विशेषता का बोध होता है, इसी प्रकार काव्य में भी रचना से माधुर्य आदि गुणों के व्यंजन के द्वारा रसों का उपकार होता है। सा पुनरीति, वह रीति चार प्रकार के होते हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। उनमें से माधुर्य इति माधुर्य व्यंजक पूर्वोक्तम वर्णम के द्वारा की हुई समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना को वैदर्भी कहते हैं। उदाहरण जैसे पूर्वोक्त अनंग इत्यादि। रुद्रट ने वैदर्भी रीति का यह लक्षण किया है। असमस्त इति, समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त संश्लेष आदि 10 गुणों से युक्त एवं चवर्ग से अधिक तथा युक्त अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त सुंदर वृत्ति वैदर्भी कहती है। यहाँ 10 गुण रुद्रट के मतानुसार जानना, यथा श्लेषः, प्रमादः, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्तिर उदारत्वम्, ओज, कांतिः, समादयः इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणः 10 गुणाः स्मृताः। ओजः इति ओज को प्रकाशित करने वाले कठिन वर्णों से बनाए हुए अधिक समासों से युक्त उद्भट बंध को गौड़ी रीति कहते हैं। उदाहरण जैसे चद, अद्भुज इत्यादि। पुरुषोत्तम ने गौड़ी का लक्षण जो किया है, बहुत रीति, बहुत से समासों में व्याप्त बड़े बड़े महाप्राण प्रयत्न वाले अक्षरों से युक्त अनुप्राण, अनुप्रास, यमक आदि शब्द महिमा के रक्षण में व्यग्र अर्थात अधिकतर अनुप्रास आदि से युक्त और बड़े थोड़े वाक्यों वाली रीति को गौड़ी कहते हैं। वर्णय, उक्त दोनों रीतियों के जो शेष वर्ण हैं, अर्थात जो वर्ण न माधुर्य के व्यंजक हैं न ओज के, उनसे जो रचना की जाए और जिसमें 5-6 पद तक का समास हो, वह रीति पांचाली कहती है। उदाहरण माधुर्य इति, पहले माधुर्य व्यंजक और वो जो व्यंजक जो वर्ण कहते हैं, इस पद की रचना उनसे भिन्न है। अर्थ अर्थात बसंत से बोधित माधवी की मधु समृद्धि से, अर्थात माधवी के पुष्प रस का बढ़ गई है, अथवा मस्त जिसकी उस मस्त ध्वनि वाली मधुर स्वर युक्त भ्रमरी ने बार बार दबे हुए अक्षरों से गाना प्रारंभ किया, इस प्रकार गाना प्रारंभ किया जिसमें अक्षर प्रतीत नहीं होते, केवल गुनगुनाहट नहीं सुनाई देती। भोज ने पंचाली का यह लक्षण किया है। समस्त इति, जिसमें 5-6 पदों का समास हो, ओज और कांति नामक गुण से जो युक्त हो और मधु एवं सुकुमार हो, उस रीति को कवि लोग पंचाली कहते हैं। लाटी, वैदर्भी और पंचाली इन दोनों के मध्य की अर्थात दोनों के लक्षणों से कुछ कुछ उक्त रीति को लाटी कहते हैं। जैसे अयम, इस पद्य के पहले चरण की कोमल पद रचना और यन, द्वंद आदि माधुर्य व्यंजक वर्ण वैदर्भी रीति के पोषक हैं, और द्वितीय आदि चरण के समास तथा द, क्रम, हभ आदि वर्ण ओज के व्यंजक तथा पंचाली रीति के पोषक हैं। दोनों के लक्षण मिलने से यह लाटी रीति का उदाहरण है। अर्थ, ब्रैकेट सूर्योदय का वर्णन है, ब्रैकेट बंद, पद्मिनियों की मौन मुद्रा को तोड़ने वाला अर्थात कमलिनियों को खिलाने वाला उदयाचल की वन पंक्ति में स्थित मंदार का नया फूल, और बिरह से व्याकुल चक्रवाकों के जोड़ों का मित्र अर्थात रात्रि में वियुक्त चक्रवाक और चक्रवाकियों को परस्पर मिलाने वाला क्रोध से भरे बंदर के गाल के समान लाल यह सूर्य अंधकार को फाड़ता हुआ उदय होता है। किसी ने लाठी रीती का लक्षण यूं किया है, मृदु पद इति, जो कोमल पदों और सुकुमार समासों से सुंदर हो और बहुत से संयुक्त अक्षरों से युक्त न हो एवं समुचित विशेषणों के द्वारा जिसमें वस्तु वर्णित हो उसे लाठी रीति कहते हैं। और लोगों ने रीतियों के यह लक्षण किए हैं, गौड़ीति आडंबर युक्त रीति को गौड़ी कहते हैं और सुललित विन्यास युक्त रीति का नाम वैदर्भी है। इन दोनों के मिश्रण से पांचाली रीति होती है और कोमल पदों से लाठी रीति बनती है। क्वचितु कहीं कहीं वक्ता आदि के औचित्य से रचनावादी बदली जाती है, वक्त्राद इति। इस कारिका में प्रथम आदि पद से वाक्य और प्रबंध का ग्रहण होता है एवं द्वितीय आदि पद से समास और वर्णों का ग्रहण होता है। उनमें से वक्ता के औचित्य कारण बदली हुई रचना का उदाहरण मंथायस्य इति, द्रौपदी से बातें करते समय भीमसेन के कान में रणदुंदुभि की ध्वनि पड़ी, उसे सुनकर उन्होंने यह पद्य कहा। मंथन के समय अथवा मंथन दंड यानी मंदराचल के द्वारा चारों ओर उछलते हुए समुद्र के जल से व्याप्त हो गई हुए कंदराएं, जिसकी उस मंदराचल के शब्द से के समान घोर और कोण बजाने यानी का डंडा के आघात होने पर प्रलय काल से गरजते हुए बादलों की टक्कर के समान प्रचंड, द्रौपदी के क्रोध की सूचना देने वाला कौरवों के कुल क्षय का सूचक उत्पात रूप निर्घात वायु हमारे सिंहनाद के समान यह रणदुंदुभि किसने बजाया। यदा अंतरिक्षे बलवान मारुतो मारुताहतः पतस्यघ स निर्घातो जायते वायु संभवः। आकाश में बलवान वायु से टकराकर दूसरा वायु जब नीचे गिरता है तो उसे निर्घातवाद कहते हैं। इस प्रकार के अशुभ उत्पात राजा का क्षय सूचित किया है, करते हैं। ढका सत सहस्त्राणि भेरी सत सतानि च एकदा यत्र टताणि अंगे कोण घात सह उच्यते। सैकड़ों ढक्का और भेरी जब एकदम बजने लगते हैं तो उसे कोण घात कहते हैं। अतः इस पद्य में कोण घात शब्द का यह दूसरा अर्थ भी हो सकता है, अत्र इति। यहाँ यद्यपि वाच्य क्रोध का व्यंजक नहीं प्रत्युत हर्ष के कारण है, क्योंकि भीमसेन तो पहले से ही युद्ध के लिए रस्सियां तुड़ा रहे थे, केवल युधिष्ठिर ही बीच में बाधक थे। तथापि इस पद्य के बोलने वाले प्रसिद्ध क्रोधी भीमसेन है, अतः इसकी रचना उद्धत की गई है। वाच्य के औचित्य से रचना का भेद जैसे पूर्वोक्त माधुर्य युद्धमान इत्यादि पद्य इसमें अर्थ उद्धत होने के कारण रचना की उद्धता आई है। प्रबंध औचित्य से रचना का भेद जैसे नाटक आदियों में रौद्र रस में भी लंबे समास नहीं किए जाते, क्योंकि वे अभिनय के प्रतिकूल पड़ते हैं। अभिनय करते समय ऐसे ही शब्द बोलना उचित है जिनका अर्थ लोग तुरंत समझ लें। लंबे समासों का अर्थ समझने में विलंब होता है, अतः वे अभिनय के अनुकूल नहीं होते। इसी प्रकार आख्यायिका में श्रृंगार रस में भी कोमल रचना कम होती है, क्योंकि वहाँ वक्ता कवि होता है, रागी नहीं। श्रृंगार में भी माधुर कोमल रचना अनुरागी के मुख से ही अच्छी लगती है। कथा में रौद्र रस में भी अत्यंत उद्धत रचनादिक नहीं होते, क्योंकि वहाँ वक्ता स्वयं क्रोधाविष्ट नहीं होता। इसी प्रकार और भी जानना इति विमलायाम नवम परिच्छेद। इस प्रकार साहित्य दर्पण के नवम परिच्छेद की समाप्ति हुई।